लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने कहा है कि गाजा में पिछले सप्ताह इसराइली हमलों में लगभग 629 लोग मारे गए, जिनमें से आधे से अधिक लोग उस समय आश्रय स्थलों और आवासीय भवनों में थे, जिससे ये चिंताएं भी उभरी हैं कि सभी हमले सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाकर नहीं किए गए। गाजा में मौजूद संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने गुरुवार 22 मई को पुष्टि की है कि इसराइल की लगभग 11 सप्ताह की पाबंदी के बाद अंततः क्षेत्र के अंदर स्थित गोदामों में अति आवश्यक सहायता सामग्री पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गाजा में जरूरतमंद आबादी तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए 5 चरण की अपनी एक योजना प्रस्तुत की है। उन्होंने इसराइल से इस योजना को मान लेने का आग्रह करते हुए स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र ऐसी किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून या बुनियादी मानवतावादी सिद्धांतों का सम्मान करने में विफल साबित हो। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
OHCHR के फिलिस्तीनी क्षेत्र में कार्यालय के अनुसार विस्थापित लोगों के घरों और तंबुओं को निशाना बनाकर किए गए हमलों में कम से कम 558 लोग मारे गए, जिनमें से कम 148 बच्चे और महिलाएं थीं। OHCHR ने कहा है कि गाजा में बुनियादी ढांचे के मौजूदा विनाश के संदर्भ में आश्रय स्थलों पर हमलों की उच्च संख्या गंभीर चिंता पैदा करती है कि सभी हमले सैन्य लक्ष्यों को निशाना नहीं बना रहे थे। उधर गाजा में मानवीय सहायता सामग्री के प्रवेश पर लगभग 80 दिनों से लगी इसराइली पाबंदी को आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद पिछले कुछ दिनों के दौरान गाजा में मानवीय सहायता सामग्री से लदे कुछ ट्रक दाखिल हुए हैं। इस बीच यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने गाजा में मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक योजना प्रस्तुत की है। उन्होंने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक जितनी सहायता सामग्री की अनुमति दी गई है वो चाय के चम्मच के बराबर है, जबकि विशाल सहायता सामग्री की आवश्यकता है, जरूरतें बहुत हैं और बाधाएं बढ़ रही हैं।
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase of this cruel conflict.
यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को इस क्रूर युद्ध के सबसे क्रूर दौर का सामना करना पड़ रहा है और जैसा कि दुनिया के एक प्रमुख भुखमरी आकलन में पाया गया है कि गाजा की पूरी आबादी अकाल के जोखिम का सामना कर रही है। परिवार भूखे पेट रहने को मजबूर हैं और दुनिया ये होते हुए देख रही है। एंटोनियो गुटेरेश ने दोहराया कि इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत स्पष्ट जिम्मेदारियां हैं। उसे आम लोगों के साथ इंसानियत भरा बर्ताव करना होगा, जिसमें उनकी गरिमा के लिए जरूरी सम्मान भी शामिल है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भविष्य में महामारी की रोकथाम, बेहतर तैयारी और प्रभावी जवाबी कार्यवाही सुनिश्चित करना है। WHO का महामारी तैयारी समझौता अब आधिकारिक रूप से अपना लिया गया है। यह एक ऐतिहासिक और बेहद अहम पहल है जो ऐसे समय में सामने आई है जब पूरी दुनिया अस्थिरता और स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है। यह समझौता न केवल देशों को एकजुट करता है बल्कि भविष्य की महामारियों की रोकथाम के लिए बेहतर तैयारी, त्वरित जवाबी प्रक्रिया और समन्वित प्रयासों का मार्ग दिखाता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
भविष्य की महामारियों से बचाव के लिए वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है और इसी इरादे से हुए समझौते को एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके मसौदे पर पिछले 3 साल से गहनता से विचार विमर्श हो रहा था और कुछ ही दिन पहले जिनीवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के वार्षिक सत्र के दौरान ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। जैसा कि कोरोना वायरस संकट के दौरान नजर आया, वैश्विक महामारी से निपटना एक विकराल चुनौती है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप होने के निकट पहुंच गई और तभी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एहसास, ये चर्चा थी कि भविष्य में किसी ऐसे संकट से निपटने के लिए बेहतर तैयारी की जरूरत है। ये समझौता उन्हीं प्रयासों का नतीजा है। इस समझौते से देशों को किसी महामारी के दौरान तेजी से एकजुट होकर काम करने में मदद मिलेगी। इसमें मुनाफे के बजाय समता पर जोर दिया गया है, यानी वैक्सीन की खुराक, बीमारी का परीक्षण, उसका उपचार, इन सभी के लिए सब देशों की समान पहुंच हो, इस पर बल दिया गया है। ये समझौता तथ्यों, साक्ष्यों पर आधारित बेहतर स्वास्थ्य रणनीति को बढ़ावा देगा और जीवन रक्षक उपायों को तेजी से मुहैया कराने में समर्थन भी।
संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियां मांग करती रही हैं कि शांति स्थापना व राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं को भी शामिल किया जाए तो उससे शांति स्थापना और आर्थिक स्थिरता में अधिक संभावना रहती है। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया दक्षिण सूडान में भी चल रही है, जहां देश के प्रथम लोकतांत्रिक चुनावों से पहले एक संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में सूडान में तैनात UN मिशन भी मदद कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है अंशु शर्मा।
अनमिस ने हाल ही में कार्यशाला आयोजित की जिसमें राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और राष्ट्रीय संवैधानिक समीक्षा आयोग की महिलाओं को राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में भाग लेने के लिए तैयार किया गया। अनमिस के उप प्रमुख ग्वांग कांग की नजर में महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम है।
जब महिलाएं संविधान निर्माण में पूरी तरह से शामिल होती हैं, तो शांति निर्माण और शासन के परिणाम अधिक समावेशी, न्यायसंगत व टिकाऊ होते हैं। दक्षिण सूडान के भविष्य के संविधान की वैधता और स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि ये देश के लोगों की विविध वास्तविकताओं व आकांक्षाओं को कितनी अच्छी तरह से पेश करता है, खास तौर पर महिलाओं की इच्छाओं को, जिन्हें बहुत लंबे समय से निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।
अनमिस के उप प्रमुख ग्वांग कांग के शब्द। वहीं दक्षिण सूडान में UN विमेन संस्था भी महिलाओं को व्यापक प्रशिक्षण एवं रणनीतिक क्षमता निर्माण के जरिए राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए मदद कर रही है। दक्षिण सूडान में UN विमेन की स्थानीय प्रतिनिधि डेल्फिन सेरुमागा कहती हैं,
परामर्श में भाग लेने से लेकर लैंगिक संवेदनशील प्रावधानों को तैयार करने तक महिलाओं के पास एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न केवल प्रक्रियात्मक आवश्यकता के रूप में बल्कि बुनियादी जरूरत की तरह।
दक्षिण सूडान में UN विमेन की स्थानीय प्रतिनिधि डेल्फिन सेरुमागा के शब्द। कार्यशाला के दौरान राजनीतिक संस्थानों और नागरिक समाज के बीच सहयोग को मजबूत करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले सुधारों पर भी चर्चा हुई।
हर वर्ष 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता से जुड़ी वैश्विक समझ और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जैव विविधता सतत विकास और पारिस्थितिकी तंत्रों और प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने सभी देशों से आह्वान किया है कि वे प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर मौलिक तरीके से पुनर्विचार करें, उन्होंने आग्रह किया कि जैव विविधता की हानि एक ऐसा वैश्विक संकट है जिसे कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आशीष देना मुझको प्रभुवर, तेरी शरण में आया हूँ। आशीष देना मुझको प्रभुवर, तेरी शरण में आया हूँ। है अंधेरी राह जगत की, है अंधेरी राह जगत की, ज्योति पाने में
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने अनबैप्टिस्ट आंदोलन की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक संदेश भेजा है तथा कैथोलिकों एवं मेनोनाइट कलीसिया के सदस्यों को हमारे साझा इतिहास पर चिंतन करते समय ईमानदारी एवं दयालुता का प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। मेनोनाइट ख्रिस्त स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में अनबैप्टिस्ट आंदोलन की स्थापना के 500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एकत्रित हैं। अनबैप्टिस्ट एक प्रोटेस्टेंट ख्रिस्त समुदाय है जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में फ्रीजलैंड में हुई थी। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को स्मरणोत्सव में भाग लेने वालों को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने पुनर्जीवित येसु के पहले शब्दों को याद किया, तुम्हें शांति मिले। पोप ने कहा, यह आंदोलन पास्का काल में हो रहा है और उन्होंने अनबैप्टिस्ट आंदोलन की मौलिक नवीनता एवं नवीनीकरण की मूल इच्छा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, आपके उत्सव के लिए चुना गया आदर्श वाक्य प्रेम करने का साहस हमें सबसे बढ़कर कैथोलिक एवं मेनोनाइट के लिए प्रेम की आज्ञा, ख्रिस्त एकता के आह्वान और दूसरों की सेवा करने के आदेश को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। पोप लियो ने मेनोनाइट एवं कैथोलिक दोनों को हमारे साझा इतिहास पर चिंतन करते समय ईमानदारी एवं दयालु होने के लिए आमंत्रित किया जिसमें दर्दनाक घाव एवं कहानियां शामिल हैं जो आज तक कैथोलिक मेनोनाइट संबंधों और धारणाओं को प्रभावित करती हैं। उन्होंने ईश शास्त्रीय एवं प्रेरितिक चर्चाओं का भी आह्वान किया ताकि संवाद के फल स्थायी रहें। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है, फिर भी यह परीक्षा की ही घड़ी थी जब मसीह ने पिता की इच्छा को प्रकट किया। जब यीशु को फरीसियों ने चुनौती दी तो उन्होंने दो बड़ी आज्ञाएं प्रकट की, ईश्वर के प्रति प्रेम एवं अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम। इस तरह अपने दुखभोग की पूर्व संध्या पर यीशु ने एकता की आवश्यकता के बारे बात की ताकि सभी एक हो सकें, ताकि दुनिया विश्वास कर सके। पोप लियो ने संत अगस्टीन के कहावत को याद किया, मेरी सारी उम्मीदें केवल आपकी महान दया पर है, जो आप आज्ञा देते हैं उससे दें और जो आप चाहते हैं उससे आज्ञा दें। अंत में पोप लियो ने कहा कि चंगाई और गहन भाईचारे की चल रही यात्रा हमारे युद्धग्रस्त विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ख्रिस्त जितने अधिक एकजुट होंगे प्रेमपूर्ण मुलाकात की सभ्यता के निर्माण में शांति के राजकुमार मसीह के प्रति हमारी गवाही उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। पोप लियो 4वें बृहस्पतिवार को कस्तल गंदोल्फो गए जहां उन्होंने बोर्को लाउदातो सी का दौरा किया जो पोप निवास परिसर में स्थित है, जिससे पोप फ्रांसिस ने हमारे आम घर की देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के स्थान के रूप में परिवर्तित किया है। पोप ने गुरुवार को कस्तल गंदोल्फो में पोप निवास का आकस्मिक भ्रमण किया जहां उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी पोप फ्रांसिस द्वारा शुरू की गई बोर्को लाउदातो सी परियोजना का दौरा किया। पेपल विल्ला के मैदान में स्थित बोर्को लाउदातो सी पृथ्वी हमारा आम घर विषय पर प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए समर्पित स्थान है। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार पोप का स्वागत समग्र मानव विकास हेतु गठित विभाग के उप सचिव कार्डिनल फाबियो बाजो और बोर्को लाउदातो सी के परियोजना निदेशक फादर मानुएल दोरेंटेस ने किया। कुंवारी मरियम को समर्पित बगीचे में रुकने के बाद पोप लियो ने बेल्वेदेरे वाटिका का दौरा किया और फिर क्रिप्टोपोर्टिकस में रुके जो रोमन सम्राट डोमिनियन के दशकों के होल का पुरातात्विक अवशेष है। प्रेस कार्यालय के बयान अनुसार पोप लियो 14वें ने पोप पियूस 12वें के साहसिक कार्यों पर विचार किया जिन्होंने 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कस्तेली रोमानी क्षेत्र में बमबारी के बाद 12,000 से अधिक लोगों को शरण प्रदान की थी। कस्तेल गंदोल्फो की यात्रा के दौरान पोप ने प्रेरितिक पैलेस का भी दौरा किया जिससे पोप फ्रांसिस ने 2016 में एक संग्रहालय में बदल दिया था और वैटिकन लौटने से पहले ऐतिहासिक विला बर्बेरेने का भी दौरा किया। 10 साल पहले लाउदातो सी के प्रकाशन के साथ पोप फ्रांसिस ने हमारे आम घर की देखभाल के महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला था। कस्तेल गंदोल्फो में पोप निवास के आसपास का प्राकृतिक स्थल जिसमें 20 हेक्टर खेत ग्रीन हाउस और सेवा भवन शामिल हैं, को विश्व पत्र में घोषित सिद्धांतों को ठोस रूप देने के लिए सबसे अच्छी जगह माना गया। यह सपना 2023 में साकार हुआ जब पोप फ्रांसिस ने बोर्गो की स्थापना की जिसका उद्देश्य पर्यावरण की देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सिरोमलंकरा मेजर महाधम प्रांत के सिनेट ने प्रेरितिक प्रशासक जोशुआ मार इग्नाथियोस का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है तथा मैथ्यूस मार पोलिकार्पोस को मावेलिकारा का नया धर्माध्यक्ष चुना है। उन्हें कनाटा और त्रिवेंद्रम महाधम प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के पद से स्थानांतरित किया गया है। मैथ्यूस मार पोलिकार्पोस का जन्म 10 नवंबर 1955 को हुआ था। उन्होंने संत अल्वेसियस माइनर सेमिनरी त्रिवेंद्रम और वड्डावथुर के संत थॉमस प्रेरितिक सेमिनरी में अपना प्रशिक्षण पूरा किया और 18 दिसंबर 1982 को पुरोहिताभिषेक प्राप्त किया। उन्होंने पेरिस के कार्तिक इंस्टीट्यूट में अध्ययन किया है तथा मनोनमनियम सुंदर नार विश्वविद्यालय में साहित्य में डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। पोप लियो 14वें ने शुक्रवार को इटली के वेरोना शहर में 2024 के शांति के अखाड़े में भाग लेने वाले संघों और आंदोलनों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वैटिकन में हुई यह मुलाकात एक वापसी यात्रा थी जो पिछले वर्ष के आयोजन में पोप फ्रांसिस की भागीदारी के बदले थी तथा इसका उद्देश्य था पारंपरिक वेरोना मिलन समारोहों को कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत के संबंध में चर्चाओं और प्रस्तावों के लिए एक मंच के रूप में पुनः आरंभ करना। दल को संबोधित करते हुए पोप लियो 14वें ने पोप फ्रांसिस की बात दोहराई जिन्होंने कहा था कि शांति का निर्माण पीड़ितों के साथ खड़े होकर और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने से शुरू होता है। उन्होंने कहा यह दृष्टिकोण आवश्यक है दिलों दृष्टिकोणों और मानसिकताओं को निरस्त करने के लिए और एक ऐसी प्रणाली के अन्याय की निंदा करने के लिए जो हत्या करती है और फेंकने की संस्कृति पर आधारित है। पोप ने एक इसराइली और एक फिलिस्तीनी के साहसिक आलिंगन पर प्रकाश डाला जिसमें से दोनों के परिवार के सदस्य गजा में संघर्ष के दौरान मारे गए। पोप ने कहा वे अब दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।